Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajata Giri Nibham चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयहरम् पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महंतं गोविंदयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशंकराचार्यमथास्य पद्म पादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदि दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्थधारिणे ओम शांति 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 शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय शिवाय नमः ओम शिवाय नमः ओम नमः शिवाय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय हराय नमः ओम हराय नमः ओम हराय नमः ओम नमो हराय हराय नमः ओम नमो बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय
बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम
बाबाय नमः ओम नमो बाबाय बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ओम नमो बाबाय
बाबाय नमः ओम
बाबाय नमः ओम बाबाय नमः ॐ नमो बाबाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय मृडाय नमः ॐ नमो मृडाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय भज मन शिव शिव निरन्तरम् जप मन शिव शिव निरन्तरम् भज मन शिव शिव जप मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् रट मन शिव शिव निरन्तरम् स्मर मन शिव शिव निरन्तरम् ॐ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव ॐ ॐ ॐ कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद में श्वेताश्वतर उपनिषद के चतुर्थ अध्याय में सातवें मंत्र की व्याख्या है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मूह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यनन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते छन्दांसि यज्ञः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान् मायी सृजते विश्वमेतत्
अस्मान् मायि सृजते विश्वमेतत्
तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् उपनिषद सामान्य जीवों को वेदांत के गहन रहस्य को रूपकों के माध्यम से समझा रहे हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशयासो चतिमय्यमानः समाने वृक्ष दोनों का आधार एक ही है। वृक्ष शब्द का अर्थ पेड़ होता है, वृक्ष शब्द का अर्थ शरीर होता है, वृक्ष शब्द का अर्थ होता है संसार। समाने वृक्षे जीवात्मा और ईश्वर ये दोनों का एक ही आधार है, एक ही आश्रय है। कुछ धर्मावलंबी लोग कहते हैं कि मनुष्य और ईश्वर परमात्मा ये अलग अलग जगह पर रहते हैं, ईश्वर अर्थात परमात्मा ऐसे जगह रहता है वहां कोई दुख आदि व्याधि उपाधि नहीं है, जन्म मृत्यु नहीं है, उसका अपना देश अपना स्थान बड़ा दिव्य है, वहां रहता है वो। और हम लोग जीव अपने हिसाब से कर्मफल भोगने के लिए यहां रहते हैं और दर दर भटकते रहते हैं। जीव की ये चाहना है कि हम भी उसी लोक में पहुंच जाएं तो हम भी उसी तरह सुखी रहें। जैसे कोई गरीब व्यक्ति, गांव का कोई गरीब व्यक्ति, वो ये समझता है इस गांव में कोई सुख और सुविधा के साधन नहीं है और ये जो अमेरिका और यूरोप में रहने वाले हैं वह भरपूर सुख सुविधा का साधन उठाते हैं, प्रयोग करते हैं, वहां कोई कष्ट नहीं और यहां तो कष्ट ही कष्ट है, ऐसी कल्पना करते हैं गांव के लोग। किसी प्रकार से हम भी वहां पहुंच जाएं, वीजा लग जाए, वहां पहुंचने की और ठिकाना मिल जाए, परमिशन मिल जाए, तब तो हम भी बड़े सुखी होंगे, ये हमारा दुख विपत्ति ये गांव का ये कष्ट ये सब हट जाएगा। लेकिन वे नहीं समझते हैं कि यहां जो कष्ट है वो वहां के कष्ट से बड़ा अच्छा है। हम तो सब घूम के आए, देखे हैं वहां कितना अच्छा है, कितने आनंद में रहते हैं लोग। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक बैलों की तरह लगे रहते हैं। बैल भी दिन में कुछ आराम करता होगा, कोलू का बैल बेचारे काम कितने करते हैं, कितना मेहनत करते हैं। लेकिन मन में यहां के लोग जहां जो वस्तु प्राप्त नहीं है वो ये समझते हैं कि उस वस्तु से मैं सुखी होऊंगा, उस देश से मैं सुखी होऊंगा। वेदांत कहता है कि ये सब भ्रांति है। जो सुखी होने वाला व्यक्ति जहां रहकर सुखी हो रहा है वहीं रहकर दुखी होने वाला व्यक्ति दुखी हो रहा है। और जो व्यक्ति जहां रहकर दुखी हो रहा है वहीं रहकर दूसरा व्यक्ति सुखी हो रहा है। तो इसका मतलब ये सिद्ध हुआ, जिन वस्तुओं के चलते दुखी होने वाला व्यक्ति दुखी हो रहा है उसी वस्तु को चलते सुखी होने वाला व्यक्ति सुखी हो रहा है। जिस समय में दुखी होने वाला व्यक्ति दुखी हो रहा है तो उसी समय में सुखी होने वाला व्यक्ति सुखी हो रहा है। सुखी होने में और दुखी होने में साधन देश काल वस्तु कारण नहीं है। वेदांत का कहना है सुखी होने में और दुखी होने में देश काल और वस्तु कारण नहीं है, हेतु नहीं है। फिर महाराज क्या हेतु है? इसका मूल कारण है सुखी होने दुखी होने में तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा सोच, तुम्हारा निश्चय कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि उन साधनों से तुम सुखी का सुख का अनुभव करना चाहते हो कि उन साधनों से तुम दुख का अनुभव करना चाहते हो। वेदांत केवल दृष्टिकोण का फर्क बताता है, सोच के फर्क बताता है, निश्चय का फर्क बताता है कि आपका निश्चय कैसा है। आप मलबार हिल के बढ़िया फ्लैट में सुखी होना चाहते हो कि एक झोपड़ी में सुखी होना चाहते हो? है? बांद्रा के खाड़ी के झोपड़ी में सुखी होना चाहते हो कि मलबार हिल के फ्लैट में सुखी होना चाहते हो? कहां सुखी होना चाहते हैं आप? यदि सुखी होने का दृष्टिकोण आपके पास है, उपाय आपके पास है, तो आप बांद्रे के खाड़ी के जो झोपड़पट्टी में भी सुखी हो जाओगे। और यदि सुखी होने का वो दृष्टिकोण आपके पास नहीं है तो मलबा हिल के प्लेट में भी दुखी नहीं होगे, सुखी नहीं होगे, दुखी ही रहोगे। तो सुख दुख वस्तु सापेक्ष नहीं है, निश्चय और भावना सापेक्ष है। इसलिए कई बार कहा है सुख दुख बहिर्गत नहीं है, सुख दुख अंतर्गत है, आंतरिक है सुख दुख। ये बात इस मंत्र के द्वारा समझाया जा रहा है। एक व्यक्ति जो है उससे उसका भरपूर आनंद लेकर आनंद का अनुभव करता है, दूसरा व्यक्ति जो है उससे आनंद का अनुभव न करके जो नहीं है उससे आनंद की कल्पना करता है। बोलो, यही फर्क है सुखी दुखी होने में। एक व्यक्ति झोपड़ी है तो कहता है कि ईश्वर की बड़ी कृपा हो गई है, झोपड़ी तो मिल गई। एक व्यक्ति यदि उसको प्लास्टिक मिल गया है 4-5 मीटर का तो वह उसी से संतुष्ट हो गया, चलो ईश्वर की कृपा से एक वर्णे के लिए प्लास्टिक तो मिल गया है, भीजेंगे तो नहीं कम से कम। वो तो उसी प्लास्टिक का उपयोग करेगा, जब तक बारिश रहेगी तब तक वो ओढ़ता रहेगा, भीजेगा नहीं, अपने आप को सुरक्षा कर लेगा वो। परंतु दूसरे व्यक्ति छत्री भी है, बहुत कुछ है, साधन है, फिर भी वह असंतुष्ट होता है, ये नहीं है। एक व्यक्ति उस प्लास्टिक से संतुष्ट हो सकता है, दूसरा कहता है कि यह प्लास्टिक भी कोई साधन है, बढ़िया छत्री होना चाहिए। एक व्यक्ति बिजली चली गई तो एयर कंडीशन बंद हो गया तो वह बहुत छटपटाने लग गया, दूसरा व्यक्ति कहता है कि कोई नहीं बिजली चली गई, खिड़की खोल लो और हाथ में एक कापी है उसी से हिला लो और खत्म हो गई काम। एक कॉपी से संतुष्ट कर लेगा है? करेगा कि नहीं? आप लोग कर ही रहे हो। एक तो कॉपी से संतुष्टि कर लेगा, हाथ में जो कॉपी थी उसी से वो, और कॉपी भी नहीं हो तो अपने कपड़े का एक पल्लू उठा लेगा, उसी को घुमाता रहेगा। एक रुमाल के टुकड़े से वो अपना काम करता रहेगा, और दूसरा उसके पास रुमाल भी है, कॉपी भी है, कपड़े का पल्लू भी है, उसका प्रयोग करता नहीं, बुमा बुम करता है, एयर कंडीशन बंद हो गया। आपकी दृष्टिकोण है भाई। ये बता रहे हैं ये मंत्र, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो, कल के मंत्र में बता रहे थे, द्वौ सुपर्णा सयुजा सखाया, समानम वृक्षम परिस्वस्य जाते तयोरन्यम पिप्पलम स्वादवत्ती अनस्न नन्न अविचाकसीती ही। उसी को यहां दूसरे रूप में समझा रहे हैं, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न, एक ही आश्रय में रहने पर, एक ही जगह पर रहने पर भी, पुरुषो निमग्नो, पुरुष तो उसी वस्तुओं में निमग्न हो गया, आसक्त हो गया। पुरुष माने या जीवात्मा के लिए लेना, या पुरुष शब्द का अर्थ परमात्मा को नहीं लेना। पुरुषो उसति वसति इति पुरुष, हालांकि परमात्मा भी इसी नवद्वारवती पुरी में रह रहा है, इसलिए वो भी पुरुष हो सकता है। इसलिए कहा कि समाने वृक्षे नवद्वारवती पुरी में दोनों रह रहे हैं, दोनों ही पुरुष हैं। पुरुष उसति वसति इति पुरुष, ये व्युत्पत्ति किया है नवद्वारवती पुरी में, देह में, देह रूपी वृक्ष में रह रहे हैं। रह रहे का मतलब यह है अभिव्यक्ति का ये आलंबन हुआ है, एक ही वृक्ष में दोनों रह रहे हैं का अभिप्राय है। वो शरीर में ही रहते हैं, शरीर से भिन्न नहीं रहते होंगे, ये नहीं समझ लेना। वो तो शरीर के बिना भी रहता है, जीवात्मा शरीर के बिना भी रह सकता है, ईश्वर शरीर के बिना भी रह सकता है, फिर भी ये कहा गया कि समान वृक्षे, इसका अभिप्राय यह है ये दोनों शरीर में ही उपलब्ध होते हैं, रहते सब जगह हैं, उपलब्ध शरीर में होता है, क्योंकि सर्वव्यापक होने के कारण वो तो सभी जगह रहता है। सर्वव्यापक होने के कारण सभी जगह रहता है, तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि केवल शरीर में रहता है? समान वृक्ष पुरुषो निमग्न, ये क्यों कहा? तो ये कहा है कि शरीर में वह अनुभव में आता है, शरीर में वह अभिव्यक्त होता है, जहां शरीर नहीं है वहां वह अभिव्यक्त नहीं होता, अनुभव में नहीं आता। जैसे हमने कई बार उदाहरण दिया है इस बात को, जैसे पावर हाउस से आने वाला जो पावर है अर्थात बिजली है, वह तो सभी जगह यानी सभी तारों में रहता है, सभी तारों में रहने पर भी यहां बिजली है ये अनुभव तो, जहां बल्ब है और बल्ब में जलता होगा वहां तो हमें पता चल जाता है बिजली है, जहां बल्ब में वह नहीं जला तो हमको पता नहीं चलता कि यहां बिजली है कि नहीं है। जहां बल्ब नहीं है यानी बल्ब नहीं जल रहा हो तो हम निश्चय नहीं कर सकते हैं बिजली है कि नहीं है। आप लोगों ने कई बार बड़े बड़े बिजली के लाइनों को देखा है, बड़े बड़े खंभों में बड़े बड़े मोटे मोटे बिजलियों के लाइन को देखा है कि नहीं, तारों को देखा है कि नहीं, बिल्कुल नंगे तार हैं, वहां बिजली है कि नहीं निश्चय नहीं हो सकता है। बिजली तो है, पावर हाउस से लेकर उन सभी तारों में बिजली है, लेकिन है कि नहीं हमको पता नहीं चल सकता है। पता कब चलेगा? जब वहां हम बल्ब लगाएंगे, बल्ब में वह प्रकट हो गया तो हम कहेंगे यहां बिजली है। अब बल्ब नहीं जला तो कहेंगे बिजली नहीं है। बिजली है अनुभव का माध्यम बना क्या? टेस्टर। टेस्टर माने बल्ब। बिजली है कि नहीं यह अनुभव का माध्यम क्या बना? यंत्र। उस यंत्र में वह व्यक्त हो गया, प्रकट हो गया, प्रकट हो गया तो अनुभव में आ गया। तब इसी तरह वह इन शरीरों में प्रकट, शरीर के माध्यम से प्रकट में आने वाला होने के कारण, अनुभव में आने वाला होने के कारण उसको कहा समाने वृक्षे। ईश्वर भी यदि आपको अनुभव में होगा तो इसी शरीर के माध्यम से होगा। ब्रह्म भी, आत्मा भी यदि अनुभव में आता है तो इसी के माध्यम से आता है। इसीलिए इस शरीर के अंदर एक और शरीर की कल्पना की गई है, उस शरीर को कहा गया है लिंग शरीर। उसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं और दूसरा नाम दिया गया है लिंग शरीर। और परमात्मा समान वृक्ष में रहता है का अभिप्राय है। स्थूल शरीर को माध्यम बनाकर यह नहीं कहा जा रहा है, सूक्ष्म शरीर को निमित्त बनाकर यह सारी बात कही जा रही है। वह चैतन्य स्थूल शरीर की अपेक्षा सूक्ष्म शरीर में ज्यादा प्रगट है। वास्तव में वह चैतन्य सूक्ष्म शरीर में ही प्रकट होकर ही स्थूल शरीर में प्रकट होता है। तो सूक्ष्म शरीर में वह हमेशा प्रकट रहता है, क्योंकि इस स्थूल शरीर के अंदर वह सूक्ष्म शरीर है। इसीलिए यह कहा जाता है कि शरीर में है, लेकिन जिस समय इस स्थूल शरीर से वह सूक्ष्म शरीर निकल जाता है उस समय में फिर कोई भी नहीं कहेगा, ये श्रुति भी नहीं कहेगी कि समाने वृक्षे पुरुषो निमग्न। क्या मरे हुए शरीर में दोनों रहते हैं? कौन से शरीर में दोनों रहते हैं कहा गया है? जीवंत शरीर में ये दोनों रहते हैं, जीवात्मा भी परमात्मा भी दोनों एक ही साथ रहते हैं ये कहा गया। लेकिन मरे हुए शरीर में रहते हैं कि नहीं? नहीं रहते। फिर क्यों नहीं रहते हैं भाई? क्योंकि उस जीवात्मा और परमात्मा को व्यक्त करने का जो माध्यम है लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर न रहने के कारण मरे हुए जो लाश है, शरीर है, उस शरीर को आधार बनाकर श्रुति ये नहीं कह रही है कि ये भी शरीर है, शरीर होने के कारण यहां परमात्मा है, ये श्रुति नहीं कह रही है। समान वृक्षे पुरुषो निमग्न, ये मरे हुए शरीर के बारे में नहीं कहा जा रहा है, जीवंत शरीर के बारे में कहा जा रहा है। क्योंकि जीवंत शरीर के अंदर उस चैतन्य, दोनों प्रकार के चैतन्य को अभिव्यक्त करने की जो सूक्ष्म शरीर माध्यम था, वो माध्यम इस जीवंत शरीर के अंदर है, इसलिए उस चैतन्य को प्रकट कर रहा है और वह सूक्ष्म शरीर नहीं है। तो ये श्रुति बेकार हो जाएगा कि ये शरीर में दोनों आत्मा रहते हैं, ये कहना बेकार हो जाएगा। इसलिए सूक्ष्म शरीर का नाम है लिंग शरीर।